पृष्ठ संख्या 139, बॉक्सर आंदोलन। बॉक्सर आंदोलन काफी अनुशासित थे। उनकी सैन्य संरचना की सबसे छोटी इकाई थान कंपनी थी, जिसमें 10 व्यक्ति होते थे। 10 कंपनियों की एक ब्रिगेड होती थी। थान के नायकों को तजुंगपान अथवा समग्र नेता, थुंगलिंग अथवा आदेशक, ताथनु अथवा अन्वेषक, सुनेइंग अथवा सुरक्षा अधिकारी, छियांती अथवा अग्रिम नेता, तस्वीचन विभागाध्यक्ष और शाओतुई अथवा रक्षक की आदि की उपाधि दी जाती थी। आंदोलन के नेताओं ने भी लाओ श्रतजू अथवा आदरणीय पिता, बड़ा भाई अथवा अरशिशिउंग अथवा दूसरा बड़ा भाई जैसी उपाधियां धारण कर रखी थी। पर बॉक्सरों की व्यवस्था में किसी एक नेता के अधीन कोई निश्चित नेतृत्व क्रम नहीं था। वस्तुतः इस क्रम के कारण ही बहुत अधिक राजनीति हो जाती थी। बॉक्सरों ने थाइपिंग आंदोलन को विफल करने वाली भीतरी कलह से बचने के लिए नेताओं की तानाशाही भी नहीं पनपने दी। सन 1895 ईस्वी से ही विदेशियों के विरुद्ध जन आंदोलन चल रहा था। सन 1899 से 1900 ईस्वी में इसने जोर पकड़ लिया। 1899 से 1901 ईस्वी की सर्दियों में बॉक्सरों ने साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए शांतुंग में धर्म प्रचारकों और गिरजाघरों पर आक्रमण आरंभ कर दिए। विदेशी दबाव एवं राजशाही के कुछ सदस्यों में फैले भय के कारण छिंग सरकार ने आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। शांतुंग के प्रशासनिक यूशियान, जिन्हें बॉक्सर समर्थक अथवा विदेश विरोधी समझा जाता था, हटा दिए गए तथा उनके स्थान पर युवन प्रखाय को शांतुंग का प्रशासक नियुक्त किया गया। युवन प्रखाय ने आंदोलन के प्रति कड़ा रवैया अपनाया तथा इह थुयेन संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। पर इह थुयेन ने युवन का विरोध करने के साथ साथ अपने विदेश विरोधी संघर्ष को जारी रखा। परंतु सन 1900 की बसंत के बाद यह संघर्ष आगे न चल सका। युवन ने बॉक्सरों को कुचलने के लिए नई सेना का प्रयोग किया, तो बॉक्सरों ने शांतुंग को छोड़कर चिरली को अपना वोट केंद्र बना लिया। शांतुंग में हुई पराजयों से बॉक्सर हतोत्साहित नहीं हुए। इनकी टुकड़ियां धीरे धीरे पूरे जिले में फैल गई। गिरजाघरों को गिराते, चीनी ईसाइयों को मारते और रेलवे स्टेशनों को आग लगाते हुए वे पेचिंग की ओर बढ़ने लगे। अप्रैल के अंत तक उन्होंने कई शहरों पर नियंत्रण कर लिया और पेचिंग में घुसपैठ करने लगे। हर स्थान पर स्थानीय जनता ने उनका साथ दिया। मई में पेचिंग में विदेश मंत्रियों ने चीनी सरकार को बॉक्सरों के विरुद्ध एक पत्र भेजा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तब तक उन्हें भी इस आंदोलन के विस्तार एवं उद्देश्य का पूरा ज्ञान नहीं था। आंदोलनकारियों के प्रति व्यवहार के विषय में छिंग सरकार में बहुत मतभेद था। इस समय तक सम्राज्ञी तस्सी बॉक्सरों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाना चाहती थी। मई का महीना आते आते स्थिति यह हो गई थी कि पेचिंग के सुरक्षा कर्मियों ने शहर में घुसने वाले विद्रोहियों को रोकना छोड़ दिया। इससे पहले ही बॉक्सर आंदोलनकारियों ने शहर के निर्धन वर्ग को अपने साथ मिलाना आरंभ कर दिया था। अनेक स्थानों पर विदेशियों का सफाया करो, एक्सटर्मिनेट द फॉरेनर्स के पोस्टर लगा दिए गए। एक पोस्टर में लिखा था, देश की हानि तथा जनता को पीड़ित करने वाली संधियों का हम घोर विरोध करते हैं। उच्चाधिकारी देश का विनाश कर रहे हैं, उनके अधीनस्थ कर्मचारी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। लोगों के पास अपने कष्ट दूर करने का कोई उपाय नहीं। मोस्ट बिटरली डू वी हेट द ट्रीटीज विच हार्म द कंट्री एंड ब्रिंग कालमिटीज ऑन द पीपल। हाई ऑफिशियल्स बिट्रे द नेशन, लोअर रैंक्स फॉलो स्वीट, द पीपुल फाइंड नो रेडरेस फॉर दियर ग्रीवेंसेज। इस समय तक संगठित आंदोलन के साथ साथ स्थान स्थान पर विद्रोह भड़कने लगे। इससे बक्सरों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। पेचिंग की सड़कों पर इनके निशंक घूमने से इनके आत्मविश्वास और इनके लिए सरकार के परोक्ष समर्थन का पता चलता है। जून मास के आरंभ में बॉक्सर आंदोलनकारियों का लाल पगड़ी, लाल कमरबंद, जूते और लाल धारी के मोजे पहने, हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें या लंबे भाले लिए बेधड़क घूमना एक आम बात हो गई। कुछ समय अनिश्चितता दिखाने के बाद छिंग सरकार खुलकर उनका समर्थन करने लगी। परिणामतः आंदोलनकारियों को राजमहलों, सरकारी कार्यालयों और यहाँ तक कि राज परिवार के सदस्यों एवं सामंतों के घरों तक में स्थान दिया गया। इससे विदेशी आतंकित हो गए और उन्हें दूतावासों और पेईथांग गिरजाघरों में शरण लेनी पड़ी। मध्य जून में बॉक्सरों ने पेचिंग और वहां के दूतावासों पर कब्जा कर लिया। विदेशी भवनों आदि को लूट कर आग लगा दी और चीनी ईसाइयों को बड़ी संख्या में मौत के घाट उतार दिया। बॉक्सरों ने पेचिंग की उपनगरी थियनचिन पर धावा बोल दिया। थियनचिन की घेराबंदी बहुत दृढ़ थी। एडमिरल सेमियोर के नेतृत्व में आया सहायक दल पेचिंग की ओर जा भी न सका और सहायता कार्य एक महीने के लिए स्थगित करना पड़ा। अपने स्वार्थ के लिए ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस, अमेरिका, जापान, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसी साम्राज्यवादी शक्तियां एक हो गई और इन्होंने मिलकर दूतावासीय क्षेत्र की रक्षा का कार्य संभाल लिया। इस बीच चीन के विदेश विभाग ने विदेशी शक्तियों से अनुरोध किया कि वे और अधिक सैनिक चीन में नहीं भेजे, परंतु मित्र देशों ने इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने ताकू में स्थित चीनी दस्तों पर आक्रमण कर दिया। पेचिंग में यह अफवाह फैल गई कि मित्र देशों ने सम्राज्ञी से कहा कि वे विदेशी समर्थक कुआंगशिव को सत्ता सौंप दें। इस बात से महारानी तत्सी क्रुद्ध हो उठी और उन्होंने 21 जून को विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और प्रांतीय बलों को युद्ध के लिए तैयार हो जाने का आदेश दिया गया। विदेशी राजदूतों से 24 घंटे के अंदर पेचिंग छोड़ने को कहा गया। इस अवधि के उपरांत चीनी सैनिकों ने दूतावासों पर गोलाबारी आरंभ कर दी। यह युद्ध 14 अगस्त तक चला। इसके बाद लगभग 20,000 सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय सहायता दस्ता विदेशियों और चीनी ईसाइयों को बचाने के लिए पेचिंग में घुस गया। यह सारा युद्ध विशेषतः चिरली में लड़ा गया और चीन की ओर से सरकारी सेना और बॉक्सर आंदोलनकारियों ने भाग लिया। इसमें बॉक्सर आंदोलन विदेशियों के प्रति मात्र विरोध प्रदर्शन न रहकर उनके विरुद्ध सशस्त्र युद्ध में परिवर्तित हो गया। जब उत्तरी चीन में लड़ाई छिड़ी हुई थी, तब दक्षिणी चीन के प्रशासक चीनी सरकार के आदेशों की अवहेलना करके विदेशियों का साथ दे रहे थे। युवन प्रखाय और ली हुआंगचांग जैसे प्रशासक यह मानते थे कि वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने तथा चीन के आधुनिकीकरण के लिए विदेशियों का सहयोग आवश्यक था, इसलिए उनका विरोध व्यर्थ था। ऐसी विपत्ति के समय ये प्रशासक यदि चीन सरकार का साथ देते तो चीन की विजय होती या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। एक ओर साम्राज्यवादी शक्तियों की विध्वंस शक्ति और उनकी परस्पर गुटबंदी चीन की सफलता में बहुत बड़ा बाधक हो सकती थी, वहीं दूसरी ओर यह भी सत्य है कि विदेशी शक्तियां केवल अपनी सत्ता के क्षय के भय से एक हुई थी, परंतु चीन में भी इन शक्तियों के विरुद्ध एकता नहीं थी। अतः विदेशियों को चीन को अपने अधीन करने और उसके टुकड़े करने में सफलता मिल गई। अगस्त के मध्य तक विदेशी शक्तियों ने पेचिंग को अपने अधीन कर लिया। महारानी तत्सी पेचिंग छोड़कर शानसी की ओर भाग गई। पृष्ठ संख्या 143। छिंग प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों और मंत्रियों ने विदेशी शक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत आरंभ कर दी। 14 जुलाई को थियनचिन के पतन के पश्चात यह स्पष्ट हो गया था कि अब साम्राज्यवादियों की विजय निश्चित है। अतः उनसे संधि का प्रस्ताव रखा गया, परंतु 8 देशों की सेना पेचिंग पर नियंत्रण करने के पश्चात ही संधि के लिए बातचीत करने को तैयार हुई। छिंग प्रशासन एवं साम्राज्यवादी शक्तियों ने इस समस्त संघर्ष की अत्यंत विचित्र व्याख्या प्रस्तुत की। विदेशी साम्राज्यवादी प्राप्त सुविधाओं की रक्षा करना एवं अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे, तो छिंग सरकार अपनी सत्ता वापस चाहती थी। इसलिए दोनों ने मिलकर यह दुष्प्रचार किया कि सारा बक्सर आंदोलन एक गुप्त संगठन द्वारा किया गया विद्रोह था। छिंग सरकार का उससे कोई संबंध नहीं था तथा छिंग सरकार ने उस विद्रोह का दमन करने का पूरा प्रयास किया। छिंग शासन की अनिश्चय की स्थिति और परस्पर मतभेदों के कारण इस व्याख्या के पक्ष में युक्तियां ढूंढना कठिन न था। बॉक्सरों एवं साम्राज्यवादियों के मध्य हुए इस भीषण संघर्ष में बॉक्सरों ने बहुत वीरता दिखाई, परंतु विदेशी सेना चीनी पक्ष की अपेक्षा बहुत अधिक साधन संपन्न एवं आधुनिक शस्त्रों से लैस थी तथा विदेशी अपने विजय से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने चीन पर तरह तरह से अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने पेचिंग में हजारों पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। हजारों स्त्रियों और कई जगह पूरे परिवार ने तिरस्कार से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। जहां जनता पर यह अत्याचार हुए, वहीं चीन की गौरवशाली संस्कृति एवं इतिहास की भी विदेशियों के हाथों बहुत क्षति हुई। उन्होंने राजमहल की सभी बहुमूल्य वस्तुएं लूट ली। अकेला पेचिंग शहर ही विदेशियों के कोप के पात्र नहीं बना, अपितु जगह जगह भी ईसाई धर्म प्रचारकों पर आक्रमण हुए थे, उन सभी स्थानों को नष्ट कर दिया गया। कई स्थानों पर पूरे के पूरे गांवों को आग लगा दी गई। इसी बीच रूस ने मंचूरिया पर अपना अधिकार जमा लिया और विशाल दीवार के समस्त उत्तरी भाग को अपने अधीन रखने का दावा किया। इस तरह चीन पर आक्रमण के द्वारा अधिक लाभ उठाने के लिए सभी साम्राज्यवादी शक्तियों में एक होड़ लग गई। ब्रिटेन और जापान अपने लिए कुछ विशेषाधिकार पाए बिना रूस का दावा मानने को तैयार नहीं थे। इस कलह के कारण अंतिम संधि पत्र पर सितंबर 1901 ईस्वी तक हस्ताक्षर नहीं हो सके। यद्यपि छिंग साम्राज्ञी 27 दिसंबर 1900 ईस्वी को ही उसके प्रारूप को स्वीकार कर चुकी थी। सम्राज्ञी तत्सी ने अपने दरबार सहित पेचिंग से शानशी जा चुकी थी और राजधानी पर विदेशियों का अधिकार हो चुका था। अतः चीन के भविष्य का प्रश्न बहुत जटिल बन गया। विदेशी शक्तियां अनेक विकल्प स्वीकार करने पर सहमत थी। इनमें चीन का विभाजन तथा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से किसी नए राजवंश का सूत्रपात आदि प्रस्ताव सम्मिलित थे, परंतु अंत में अमेरिका ने अन्य शक्तियों को इस बात पर सहमत कर लिया कि छिंग वंश का समर्थन किया जाए और चीन की क्षेत्रीय और प्रशासनिक संप्रभुता की रक्षा की जाए। परंतु वस्तुतः यह सब करके भी उन्होंने चीन को अपना एक उपनिवेश बना लिया। बॉक्सर संधि एक अत्यंत अपमानजनक संधि थी। वस्तुतः इसे संधि कहा ही नहीं जा सकता। चीन को अपना पक्ष रखने का अधिकार ही नहीं था। इसमें विदेशियों द्वारा जो शर्तें लगाई गई थी उन्हें मानने पर छिंग सरकार विवश थी। इसमें कुल 12 अनुच्छेद और एक परिशिष्ट था। ये 12 शर्तें निम्नलिखित थी। पहला, चीनी राज परिवार का कोई सदस्य बर्लिन जाकर जर्मनी के सम्राट एवं साधारण सभा के समक्ष जर्मन पादरी बैरन फन केटलर की हत्या के लिए चीनी राज परिवार की ओर से खेद प्रकट करेगा तथा उसकी हत्या के स्थल पर एक स्मारक बनाया जाएगा। दूसरा, जिन 45 शहरों में विदेशियों की हत्याएं की गई या उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वहां की नागरिक सेवा परीक्षाएं निलंबित की जाएंगी। तीसरा, चीन की राजस्व परिषद के उपाध्यक्ष जापान जाकर जापानी दूतावास के अधिकारी की हत्या के लिए चीनी शासक एवं सरकार की ओर से खेद प्रकट करेंगे। चौथा, जिन विदेशी बस्तियों को अपवित्र किया गया था वहां प्रायश्चित सूचक स्मारक बनाए जाएंगे। पांचवा, चीन शस्त्रास्त्र और गोला बारूद आयात नहीं करेगा। छठा, पेचिंग के दूतावासीय क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा तथा इसे केवल विदेशियों के निवास के लिए आरक्षित किया जाएगा। पेचिंग और समुद्र तट के मध्य में संचार में बाधा उत्पन्न करने वाले ताकू तथा अन्य किलों को गिरा दिया जाएगा। आठवां, कुछ विशिष्ट स्थल विदेशी शक्तियों के हाथ में रहेंगे। नौवां, विदेश विरोधी संगठन का सदस्य बनने पर मृत्यु दंड की व्यवस्था की जाएगी। दसवां, व्यापार एवं जहाजरानी संबंधी संधियों के संशोधन के लिए तत्कालीन बातचीत की जाएगी तथा विदेशियों की सहायता से नदी संरक्षण परिषदों की स्थापना की जाएगी। ग्यारहवां, विदेशी कार्यालय तजुंगली यामन में सुधार करके उस 6 अन्य मंत्रालयों से ऊपर की श्रेणी में रखा जाएगा। बारहवां, 50 वर्ष में 33 करोड़ लाख अमेरिकी डॉलर क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। इस संधि के प्रावधानों ने चीन की प्रभुसत्ता एवं आत्मसम्मान पर करारा प्रहार किया। शास्त्रों के आयात पर प्रतिषेध, किलों को गिराना, विदेशी सेनाओं को आश्रय, परीक्षाओं के स्थान आदि के संबंध में बनाए गए प्रावधान चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप थे। अधिकारियों को दंडित करने और परीक्षाओं को स्थगित करने से संभ्रांत वर्ग एवं अधिकारी वर्ग विक्षुब्ध हो गया। उच्चाधिकारियों को विदेश विरोधी उपद्रवों के लिए दंडित करने से चीन विदेशियों का दास बनकर रह गया। क्षतिपूर्ति के भुगतान से चीनी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय अर्थतंत्र का भारी अपव्यय हुआ, जिसके कारण आर्थिक सुधार एवं विकास कार्य असंभव हो गए। क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज की दर इतनी अधिक थी कि भुगतान की अवधि में राशि दुगुनी हो गई। इस राशि के भुगतान की पद्धति ने भी चीन की प्रभुसत्ता पर व्यापक प्रहार किया। इस राशि के भुगतान के लिए समुद्री सीमा शुल्क, चुंगी और नमक करों का प्रतिभूति के रूप में रखकर चीन को ऋण दिए गए। इससे चीन के अर्थतंत्र पर विदेशियों की पकड़ और भी मजबूत हो गई।